शैतानिर्रजीम। देखिएगा, सात सवालात हैं जो जहनों में उभरते हैं। इंशाल्लाह इस किताब को पढ़ने के बाद हम उसका जवाब पाएंगे। पहला सवाल क्या है? क्या नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना औरतों पे फ़र्ज़ है? ये भी सवाल आपसे बहुत सारे लोग पूछेंगे। ये फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ पूरे करो, तो ये इसका इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। दूसरा सवाल क्या है कि ख़वातीन के इस फरीज़े के अदा करने की क्या अहमियत है? कि ये कोई अहम काम भी है या कोई गैर अहम काम है? तीसरा सवाल क्या है कि क्या क़ुरूने उला, क़ुरूने उला कहते हैं पहले दौर के लोग, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब का जो दौर था, क्या उस दौर की औरतों ने आम लोगों, उज्जा अकारिब यानी अपने रिश्तेदारों और जानने वाले लोगों को बुराई से रोका? ये जहाँ भी बुक में लफ्ज़ एहतसाब आएगा ना, तो इससे यही मुराद है कि किसी को बुरा काम करते देखते हुए उसको पूछना कि आप ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चौथा सवाल क्या है कि क्या इन नेक औरतों ने उलमा और तलबा का एहतसाब किया, यानी क्या एक औरत आम लोगों ही को पॉइंट आउट कर सकती है या दीनदारों को भी पॉइंट आउट कर सकती है? पांचवा सवाल क्या है कि क्या उन्होंने अहले इक्तदार और असहाबे इख्तियार को नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोका, यानी हुक्मरान, लीडर्स, सदर, वजीर और जो भी लोग बड़े अहदों पे होते हैं, क्या उनको भी रोका जा सकता है? फिर इस मनसब पर ख़वातीन के तकर्रर की ममानियत के दलाइल क्या हैं, यानी औरत को अगर नहीं इस चीज़ की इजाज़त दी गई कि वो हुक्मरानों तक पहुँचे, तो उसकी हिकमत क्या है? और सातवां सवाल क्या है कि औरतों को बाजार में मनसब एहतसाब सौंपने की ममानियत के मुतल्लिक शुबहात क्या हैं और इनकी हकीकत क्या है? यानी कि जिस तरह एक मर्द घूम फिर के बाजारों में दूसरों के साथ मिल के तबलीग और दावा कर सकता है, तो औरतों के लिए उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो उसकी अहमियत क्या है? तो इन सात सवालों का जवाब इंशाल्लाह आपको मुझे इस किताब के अंदर मिलेगा। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि वो हमें इसको पढ़ने और समझने की तौफीक दे। और वही बात जो मुसन्निफ़ ने भी लिखी है कि अगर इसमें कोई खैर है तो वो अल्लाह की तरफ से है, शर है, कोई कमी बेशी है, तो वो मेरे और शैतान की तरफ से है। इब्ने मसूद का कॉल इन्होंने लिखा है। इब्ने मसूद फतवा देते हुए कहा करते थे, फ़ाइन यकु सवाबम फमिन अल्लाह, अगर ये फतवा सही है, दुरुस्त है, तो ये अल्लाह के हुक्म से है। वहीं यकु ख़तान, और अगर ये ख़ता है यानी मिस्टेक है, यानी मैं सही फतवा नहीं दे रहा या सवाल का जवाब ठीक नहीं दे रहा, फमिन्नी, तो ये मेरी तरफ से है। वमिन शैतानी, और शैतान की तरफ से है। वल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला व रसूलुहु बरीयान, अल्लाह और उसका रसूल इससे बरी हैं। तो आज हमें भी ये अपने लिए कहना है कि हम जो भी काम करेंगे वो इंशाल्लाह उसकी अच्छी चीज़ को अल्लाह की तरफ, उसके रसूल की तरफ, और जो कमी बेशी है उसको अपनी तरफ लेंगे। फिर आगे आप देख रहे हैं कि इन्होंने ये लिखा है कि इस किताब में जितनी हदीसें आएंगी या जो रिसोर्सेज हैं, उसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत पे है, क्योंकि ये बहुत अहम होता है किसी मौजू पे भी बात करते हुए कि उसका पीछे से रेफरेंस क्या है। फिर इसी तरह से इसमें जितनी भी बातें और वाक़ियात हैं, ये हदीस की किताबों में से, सीरत की बुक्स में से, कुरान पाक के तर्जमे मुख्तलिफ हैं या किसी किताबों के तर्जमे, और तारीख़ की किताबों से लिए गए। और इस बुक के एंड पे अगर आप देखेंगे तो सारे रेफरेंसेस इकट्ठे भी लिखे होते हैं। ये एक स्टाइल है इस राइटर का। फिर इसके बाद आम तौर पे जो हदीसें हैं उनके जो असल रिसोर्स थे वो भी नकल किए गए। बुखारी और मुस्लिम का नहीं लिखा इसलिए कि उसमें शुबे की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन अगर कोई और किताब है तो कोशिश की गई कि उसकी चेन लिखी जाए ताकि सही और ज़यीफ़ हदीस का फ़र्क पता चल जाए। इसी तरह जो आयतें और हदीसें, इसको तफसीर की किताबों और हदीस की जो शरह हैं, शरह हैं, उसमें से फ़ायदे के लिए लिया गया। कहने का मतलब ये कि इस किताब के रिसोर्सेज हैं वो सारे ठीक हैं। तो अल्लाह ताला से हम इस दुआ के साथ इसका पहला टॉपिक शुरू करते हैं। आप लोग जहनी तौर पे तैयार हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पहला हमारा इसका मौजू क्या है? अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के मुतल्लिक ख़वातीन की जिम्मेदारी और इसकी अहमियत। और इसी के अंदर फिर आप देख रहे हैं कि सब टाइटल है कि ख़वातीन की जिम्मेदारी, और दूसरी बात है कि नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने की अहमियत। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है, वाक़यात हैं जो कि ख़वातीन के नेकी के हुक्म देने और बुराई से रोकने से मुतल्लिक होंगे। और उसके फिर अंदर तीन हिस्से हैं कि आम लोगों को, अपने करीबियों को नेकी का हुक्म देना, या उलमा और तलबा का एहतसाब, या अहले इक्तदार का है। और तीसरा जो इसका टॉपिक होगा वो औरत को बाजार में मुहतसिबा के तौर पर ना मुकरर करने के दलाइल और उसके बारे में पूरी किताब का खुलासा है। चूंकि किताब के अंदर लफ्ज़ एहतसाब बहुत आएगा, और अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में रहने वालों के लिए लफ्ज़ एहतसाब बड़ा फेमिलियर है, एहतसाब कमेटियाँ, हम एहतसाब करेंगे, तो आइए थोड़ा सा इसको भी देखिए कि ये क्या है। ये लिखते हैं कि किताब में लफ्ज़ एहतसाब कसरत से इस्तेमाल किया गया, इससे मुराद अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर है। दूसरे लफ्ज़ों में नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। अब वो एक लंबा जुमला जो है, तो उसकी जगह लफ्ज़ एहतसाब बोल देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए इन्होंने भी लिखा है कि इस सारे काम में जिन लोगों ने इनकी मदद की, तो ये उनके शुक्रगुजार हैं, जिसमें घर वाले और बच्चे बीवी हैं। आपको मुझे भी इस वक्त दिल की गहराई से अपने घर वालों का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने हमें यहाँ आने का, बैठने का मौका दिया, जिन्होंने हमारी इस जिम्मेदारी को महसूस किया। कभी भी कुरान क्लास के लिए आएँ, कहीं भी जाएँ, अपने घर वालों को दुआ दें कि अल्लाह का शुक्र है, और घर जाके अगर घर में शौहर थे या घर में ससुराल हैं, बच्चे थे, जाके थैंक यू बोलें, जजाक अल्लाह खैर आपने मुझे पढ़ने का वक्त दिया। शौहर अगर आपके बच्चों को टेक केयर करते हैं तो उनका शुक्रिया बोलें, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मल्लम यशकुर नासा लम यशकुर अल्लाह, जो इंसानों का शुक्रगुजार नहीं है वो अल्लाह ताला का कभी नहीं होगा। तो जब हम अपने नेकी के कामों के बाद अपने घर वालों के शुक्रगुजार होते हैं, लाइन शक्कर तुम लाजीदन्नकुम, अगले दिन खुशी से भेजेंगे। ये जो हमारी चपकलश शुरू हो जाती है ना दीन की तरफ आते ही, फलां का मूड बन जाएगा, फलां गुस्सा करेगा, उसकी एक वजह ये भी होती है कि कल जो उन्होंने हमारे साथ तावन किया तो हमने जाके शुक्रिया भी नहीं बोला। तो करेंगे आज जाके शुक्रिया अदा? कौन कौन करेगा? किसको मुश्किल लग रहा है? सब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो आप देखिए कि उम्मत की जिल्लत और रसवाई से निकलने की जो कोशिशें हैं उसमें ये एक चीज़ हो सकती है। ये आयत जो लिखी हुई, इसका तर्जमा आप देख लीजिए कि वाला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु इन्नल्लाह लकवी अज़ीज़। मैं कहती हूँ अगर लोगों को सिर्फ इस एक आयत का तर्जमा समझ आ जाए, तफसीर नहीं मैं कहती, सिर्फ तर्जमा समझ आ जाए, सारे काम छोड़ के हम पहले अल्लाह के दीन की मदद करने लगेंगे। ये मैं आपको हल्फिया कह सकती हूँ, तर्जमा सुने फिर आप भी मेरी बात की तस्दीक करें कि और अल्लाह ताला यकीनन उसकी मदद करेगा जो इसके दीन की मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला बड़ी कुव्वत वाला, बड़ा ही ज़बरदस्त है। चंद दिन पहले एक सिस्टर थी, तो वो अपने बच्चे के किसी मसले में बहुत परेशान थी, समझ नहीं आ रही क्या करूँ कैसे करूँ, दुआएं भी नहीं कबूल हो रही, वो भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। मैंने उन्हें कहा आप अल्लाह से कहें, अल्लाह जी मेरे काम तो कोई नहीं हो रहे, तो मैं करने लगी हूँ आपके, आप जाने मेरे बच्चे जाने, आप अल्लाह से डील कर लें, क्योंकि आपने कहा है कि जो मेरे दीन के काम करेगा मैं उसके करूँगा। कहती अच्छा, हम तो ऐसे वक्तों में जो कर रहे होते हैं वो भी छोड़ देते हैं। नहीं, अल्लाह की मदद लेनी है ना अपने ज़िंदगी में, छोटे से लेके बड़े काम में, तो आप पकड़िए अल्लाह के काम। आपके घर के काम बहुत है ना, मैं आपको सोचने का तरीका सिखा रही हूँ। मतलब मेरे पास आज इतने टारगेट हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूँ। आपके साथ ऐसा होता होगा? और माशाल्लाह जिस दिन मासी नहीं आती उस दिन तो फिर बार बार मौका मिलता है, ऐसा होता होगा। हमारे यहाँ तो ये मसला है ना कि चूँकि रोज़ मासियाँ काम करती हैं, तो जिस दिन वो नहीं आती हमें मुश्किल लगता है, तो बाहर वालों को ये मसला ही कोई नहीं है कि मासी ने आना ही कोई नहीं। उनकी मासियाँ वो बिजली से चलती हैं, ना छुट्टी करती हैं, ना संडे को छुट्टी करती हैं, ना देर से आती हैं, बर्तन डाल के बटन दबा दे मासी चल पड़ती है। समझ गए ना बात को? तो जब आप अल्लाह के काम करने लग जाते हैं ना, ऑक्यूपाइड है। अब आप, मैं अपने ऊपर ही ले रही हूँ ना, कि मुझे दर्स के लिए भी कुछ देखना है, और मुझे घर भी साफ़ करना है, और मुझे खाना भी बनाना है, और जो भी सबके साथ मामले होते हैं, तो मैं बैठ के अल्लाह से कहूँगी इस आयत के मुताबिक जो आज का थोड़ा सा काम पहले मैंने दीन का करना था ना, वो करूँगी। क्यों? अल्लाह जी इसकी बरकत से मेरे सारे काम हो जाएंगे। और सैकड़ों बार आजमाया हुआ है, सैकड़ों बार आजमाया है कि जब आप अल्लाह का काम शुरू कर देते हैं, आपके अपने काम खुद ही सीधे होते हैं। फिर लोग कहते हैं ये कोई मौजज़ा है, ये है वो है, हमारे साथ तो ऐसे नहीं होता, पर मैं उन्हें कहती हूँ कि असल में ये आपको पता ही नहीं है कि ये अल्लाह से एक डील हुई हुई है। यकीन कीजिए ये आजमाने वाली बात है। दिन का आगाज़ करें अल्लाह के किसी काम से, रात सोते हुए अल्लाह के दीन के काम से करें, सफ़र का आगाज़ करें अल्लाह के रास्ते से, सफ़र का अख्ताम करें अल्लाह के रास्ते से। अभी आपको बताया रात लेट नाइट हम पहुँचे हैं अल्लाह के हुक्म से। जिस दिन कराची गए थे उसकी भी एक स्टोरी थी, वो अब नहीं सुनाऊंगी वरना सिर्फ स्टोरीज रह जाएंगी, लेकिन उधर से भी सीधा एयरपोर्ट से दर्स में ही गए थे, बड़ी भारी कीमत अदा करके गए थे। फ्लाइट वो नहीं गई, कैंसिल थी, ऑन द स्पॉट टिकट लेके पहला वेस्ट करके सिर्फ इस बात पे गए थे कि कमिटमेंट की भी और जाना है। सीधा एयरपोर्ट से घर गए, कल भी दर से ही सीधा एयरपोर्ट आई हूँ। मैं अल्लाह को कहती हूँ बस ये दो प्रैक्टिस मैंने लगा दी हैं, दर्स की या आपके काम की, बीच के काम आप खुद ही कर दे मेरे, और ये हो जाता है। ये आजमाने वाली बात है, ये जिसको कहना चाहिए कि मुजरब नुस्खा है, आजमूदा नुस्खा है, करके देखें फिर अल्लाह के रंग देखें, तो अल्लाह ताला हमारा ईमान पक्का कर दे इस चीज़ पे। तो आइए पहली फसल शुरू करते हैं। चले अब यहाँ से बकायदा किताब का आगाज़ है। अभी तक जितनी बातें थी ये छोटे मोटे इंट्रोस थे, शुरू करते हैं। आउस बिल्लाह मिन शैतान रजीम। नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने में ख़वातीन की जिम्मेदारी, पहला टॉपिक इसका हम शुरू करेंगे। फसल अव्वल है अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के मुतालिक ख़वातीन की जिम्मेदारी और उसकी अहमियत है। ये लिखते हैं कि बास लोग अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का जिम्मेदार सिर्फ मर्दों को करार देते हैं, और बहुत से हजरात की राय में औरतों की एहतसाबी कोशिशों की कोई खास वक्त और हैसियत नहीं, इनकी कोशिशें आम तौर पर बेअसर साबित होती हैं। आप इससे एग्री करते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि दीन का काम या तबलीग जो ये सिर्फ मर्दों का काम है, औरतों का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट लोगों का है। हालांकि आप देखिए कि ये लिखते हैं कि ऐसे लोगों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। कुरान और सुन्नत में ऐसे बहुत सारे दलाइल हैं जिससे औरतों के इस काम के करने की पाबंदी का पता चलता है, और ऐसी ख्वातीन ने जो ये काम किए और उसकी अहमियत का भी पता चलता है। तो हम इसमें जो बात करेंगे वो दो हिस्सों में होगी। पहली बात है अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के मुतल्लिक ख्वातीन की जिम्मेदारियाँ, और दूसरे हिस्से में उसकी अहमियत है। जिम्मेदारी को देखिए, ख्वातीन की जिम्मेदारी क्या है कि नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने में औरतों की जिम्मेदारी की दो मुख्तलिफ किस्में हैं। अब इसको आप, मैं अपने लफ्ज़ों में बोल रही हूँ, बाद में आप बुक में पढ़ें, बल्कि कल से यानी अगली क्लास से पहले अगला हिस्सा घर से थोड़ा सा गो थ्रू करके आएंगे, तो मैं कोशिश करूँ कि अपने लफ्ज़ों में ज़्यादा बात करूँ क्योंकि बुक तो आपके पास मौजूद है। यहाँ क्या बात हो रही है, जो भी हम शुरू कर रहे हैं, दो किस्म के दलाइल हम पढ़ेंगे। एक वो हैं जो आम तौर पे ऑन होल कह लीजिए, इन जनरल कह लीजिए, आम तौर पे कह लीजिए, तबलीग के काम की अहमियत और उसके फ़र्ज़ होने की दलील है, और दूसरे में ख़ास तौर पे फिर औरतों का नाम लेकर। बात समझ गए, यानी आम लोगों को भी तबलीग करनी ही है लेकिन औरतों को भी करनी है। तो ये दो हिस्सों में ये दलाइल है। इसमें पहला क्या है, आम बातें, ये है वो टॉपिक जो आपको इस मौजू को दूसरों के साथ शेयर करने में मददगार साबित होगा कि ये काम फ़र्ज़ है। इसकी पहली दलील आप नोट कर लें, सूरत असर, सबको ज़ुबानी याद होती होगी, वलअस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीन आमनू वामिलु सालिहाती वतवासो बिलहक्की वतवासो बिस्सब्र। ज़माने की कसम, बेशक इंसान घाटे में है सिवाय इन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए और एक दूसरे को हक बात की नसीहत की और एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। इस सूरत में देखिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तमाम इंसान अजीम खसारे में घिरे हुए हैं, अलबत्ता चार किस्म के लोग हैं जो इस खसारे से बचे हुए हैं। क्या पता चला, नुकसान को नफ़े में बदलने वाली चार चीज़ें। नंबर एक, ईमान। ईमान वाले खसारे से, खसारा आप कह लीजिए बैंकरप्सी, लॉस, उससे बचे हुए हैं। दूसरा, अमल सवाले, आमाल सवाले, अच्छे काम करेंगे तो अमल सवाले होंगे तो इंशाल्लाह ख़तरों से बच जाएंगे। तीसरा, तवासी बिल हक, एक दूसरे को हक की वसीयत करना। और चौथा, तवासी बिल सबर। तवासी वही लफ्ज़ है जिसको उर्दू में आप और मैं वसीयत से जानते हैं, एक दूसरे को सबर की तलकीन करना। इन सिफात में तीसरी सिफत तवासी बिल हक है। इससे क्या मुराद है, क्योंकि ज़रा सा कम सुना हुआ लफ्ज़ है। तो इब्ने कसीर का बयान कहते हैं, अत तवासी बी अदाई तवाती व तरकिल महर्रमात, नेकी की बातों की एक दूसरे को ताकीद करना और ममनुआ कामों से बाज रहने की एक दूसरे को तलकीन करना, इसको कहते हैं तवासी। बात समझ गए। अलामा फखरुद्दीन कहते हैं, मैं अरबी ना पढूं तो बेहतर है क्योंकि आप उर्दू में ही फोकस करें, कहते हैं कि सूरत में शदीद वईद है। वईद किसको कहते हैं, जिसमें डांट होती है, गुस्सा होता है। अल्लाह ताला ने चार सिफात के हामिलीन के सिवा तमाम लोगों के बारे में ये कह दिया कि वो खसारे में। ज़रा सोचें, अगर कोई आपको मुझे आके कि आपका तो लॉस हो गया, आप तो बैंक करप्ट हो गए, तो कितना खौफ आएगा। अल्लाह ने क्या कहा, वल असरीन अल इंसान, अल इंसान, सारे ही इंसान नुकसान में है। हाँ, चार सिफात जिनका तस्करा सूरत में है, वो लोग इससे बचे हुए हैं। तो मुझे आपको दिल की गहराई से अल्लाह का शुक्र करना है कि उसने ईमान दिया, उसने अमल सवाले की कोशिश करने की तौफीक तो दी। सारे तुम नहीं कर पाते, लेकिन चले कोशिश तो करते हैं, तौफीक तो अल्लाह ने दी है। और दूसरी बात यह कि किसी न किसी हद तक और एक दूसरे को अच्छे बातों का हुक्म देना और बुरी बातों से रोकना है। तो क्या पता चला कि इंसानों में मर्दों की तरह औरतें भी शामिल हैं। ये तो नहीं कहा ना कि सिर्फ मर्द ये काम करें, इन्नल इंसान लफी खुसर। तो याद रखिए कि औरत मर्द की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है आमाल में, वो तो एक थोड़ी सी हकूक और जिम्मेदारियों में अल्लाह ने फ़र्क रखा, वरना आमाल में, नेकियों में, गुनाह में, सवाब में औरत और मर्द के लिए एक ही कानून है। तो यहाँ से क्या पता चला कि जिस तरह मर्दों को ये काम करना है, इस तरह औरतों को भी करना है। और इस एक सूरत के बारे में आपने कई बार सुना होगा कि उलमाए कराम कहते हैं कि पूरा कुरान नाजिल ना होता, सिर्फ सूरत असर नाजिल हो जाती तो वो इंसानों की हिदायत के लिए काफ़ी थी। ये चार ही काम मैंने आपने 40, 60, 70 साल जो हमें अल्लाह ने दी इसमें ये करने हैं। ईमान लाना है, अल्हम्दुलिल्लाह ला चुके हैं, अब इसको कायम रखना है, कह लें अमल साले करना है, कर रहे हैं, टूटे फूटे हैं, दिन ब दिन इसकी क्वालिटी अच्छी करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक तो सारी उम्मत मुत्तफिक है, ये आखिरी दो कामों पे पता ही नहीं है कि तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र। नेकी का हुक्म देना, दीन का काम करना है, और उसपे जो मुश्किल आती है उसमें सब्र करना, ये आधी उम्मत बढ़ जाती है। वो इससे पहले ही कहते हैं नहीं और हम क्या करें, नमाजें तो हम पढ़ते ही हैं, रोज़े तो हम रखते ही हैं। तो क्या पता चला कि बहुत शिद्दतें हैं। आप अगर इस सूरत के अंदर जो ताकीदें हैं, लफी खुसर, तो लाम ताकीद के लिए, फिर आप देखिए खसरन में खसर के नीचे जो तनवीन है ना, ये भी संगीनी होती, शिद्दत का इजहार है। ये ग्रामर की कुछ चीज़ें इधर लिखी हुई हैं, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। कहने का तो ये कि शिद्दत अल्लाह ने एम्फेसाइज़ किया है, इसको एग्जेजुरेट किया है कि सिर्फ नेक अमल करके बैठ ना जाओ, बल्कि दूसरों को भी उस काम से रोको। ये है पहली दलील, क्या मिली सूरत असर से। अब दूसरी दलील देखिएगा, सूरत आल इमरान की आयत, अल्लाह सुबहान तआला हम मुसलमानों को फरमाते हैं, आयत नंबर 110 है। ये आयत मुझे लगता है कि हम सब का मोटो होनी चाहिए। कुंतुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्ला। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों के लिए पैदा किए गए हो, और तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। आप देखें कि इस आयत में अल्लाह ने हम सबको क्या कहा, खैरुल उम्मा, खैरुल उम्म। उम्म का क्या मानी है, उम्मत की जमा है बेसिकली। शर्तें तीन हैं, हम इसी पे बड़े खुश हैं, ओ हम सबसे अच्छे हैं, वी आर चोजन वन। पर तीन शर्तें क्या है, अमर बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर, और ईमान बिल्ला। इमाम मुजाहिद जो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द थे, वो इस आयत के बारे में फरमाते हैं, इसको नोट करें बल्कि हाईलाइट कर लें अपनी बुक में, कल से हाईलाइटर ले आएँ ताकि आप अहम अहम चीज़ों को हाईलाइट करेंगे तो वो फिर इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं। क्या कहते हैं, कुंतुम खैरन नासी अला हाज़ शर्ती, तुम इस शर्त पर बेहतरीन उम्मत हो कि अंतामरु बिल मारूफ व तनहौ अनिल मुनकर व तुमिनु बिल्ला, कि तुम ये तीन काम करो। तो जब शर्त ना पूरी करें तो वो काम रहेगा, फिर हम बेहतरीन उम्मत नहीं रहेंगे। इसी तरह इब्ने अतिया उंदलुसी एक मुफस्सिर हैं, वो इस आयत के बारे में क्या कहते हैं, कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से उम्मत के लिए मुकरर करदा इस फजीलत को वही शख्स पाएगा जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर और ईमान बिल्ला की शरूत को पूरा करेगा। बात वाज़े, सिंपल बात है, कोई मुश्किल नहीं है। पता क्या चला कि तुम सब हो। अब देखिए लफ्ज़ क्या है आयत में, कुन तुम, तो कुन तुम का सीगा या टेंस अरबी में जमा मुजक्कर के लिए, यानी बहुत सारे मर्दों के लिए आता है, और जहाँ ये सीगा होता है तो मर्दों के अंदर औरतें भी शामिल होती हैं। तो दो दलाइल देखिए, अभी तक जो बात की थी मैं इसको सम अप कर देती हूँ। मैं लफ्ज़ इख्तसाब और इशारे को लफ्ज़ तबलीग बोल लूँ तो इट्स ओके, उससे तबलीगी जमात तो नहीं जहन में आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी तबलीग या दीन का काम, मेरा ख्याल है ये कॉमन वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करेंगे बुक पे, तो ज़्यादा आपको बात हज़म होगी। पहली चीज़ हमने सूरत असर पढ़ी, उस सूरत से पता चला कि खसारे से बचने के लिए ये काम लाजिम है। दूसरी हमने दलील पढ़ी, कुंतुम खैरा उम्मतन, यानी अगर हम वाकई दुनिया में चोजन नेशन के नाम पे या उम्मत मुस्लिमा एक पसंदीदा उम्मत है इस नाम से मशहूर होना चाहते हैं तो हमें ये तीन काम करने पड़ेंगे। अब तीसरी जो दलील आपके सामने है वो कुरान की नहीं बल्कि हदीस की है। हदीस बड़ी प्यारी है, मेरे साथ आप बल्कि पढ़ें। ये हदीस बहुत सारे लोगों को ज़ुबानी आती है लेकिन इसका अमली इजहार नहीं आता, जो अरबिका इसे ना मैं पढ़ूंगी, आपने मेरे पीछे दोहराना है, ठीक है? इंशाल्लाह एक एक दो दो लफ्ज़ इकट्ठा करते हैं। मन रहा बुक पे देखिए, और इस पे अगर उंगली रख के पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको अरबी भी दिखेगी। मन रहा मिनकुम मुनकरन फल युगैरहु बियदिही फ़ैलम यस्तति फबिलिसानिही फ़ैलम यस्तति फबिकल्बिही वज़ालिका अदअफुल ईमान। आप देखिए कितनी खूबसूरत हदीस है। तर्जमा वैसे तो आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन मैं लफ्ज़ी तर्जमा आपके सामने पढ़ के बताती हूँ कि आप इसको अगर लिखना चाहें तो इसी हदीस के लफ्ज़ों के नीचे उसका लिखे कि मन जो रात देखे मिनकुम तुम में से मुनकरन बुराई को, यानी तुम में से जो कोई बुराई को देखे, फल युगैर खूबी यदि, बस चाहिए कि बदल दे उसको अपने हाथ से, यानी हाथ बढ़ा के रोक दे उस काम से कि ये ना करना। फ़ैल लम यस्तती, फिर अगर तुम ये ना कर सको, हर जगह बंदा हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो क्या करे, फबी लिसान ही, फिर मुंह से कह दो, जुबान से बोल दो। फ़ैल लम यस्तती, कभी कभी जुबान से भी कहने का मौका नहीं होता तो क्या करो, फबी कल्बी ही, तो फिर दिल में तो उस अमल को बुरा जानो। और ये बात यानी ना हाथ से रोकना ना जुबान से कहना, बल्कि सिर्फ दिल में ये कमल को बुरा कहना, वज़ालिका दफ़ुल ईमान, ये ईमान का अदना तरीन दर्जा है। यानी कह लें कि इसके बाद तो ईमान बिल्कुल चला ही गया, कमज़ोर ईमान की ये अलामत है। अब आप देखिए ये हदीस कितनी खूबसूरत है। हर हाल में बुराई को रोकना ही है। देखिए कि अगर कोई किसी आग के घड़े में गिर रहा हो तो हम रोकेंगे? कोई गटर के अंदर गिरने वाला तो हम उसको रोकेंगे? फौरन रोकेंगे। आप किचन में काम करती किसी सिस्टर के दुपट्टे को आग लगी देखें तो रोकेंगी? तो बस बुराइयों की गुनाहों की आग तो यही है। तो इसमें भी आप देखिए कि मर्दों के साथ साथ औरतों को शामिल, क्योंकि मिन कुम में जमा है, तो गोया कि आप कह लीजिए कि इन दोनों तीनों दलीलों से ये पता चला कि मर्दों के साथ साथ औरतों को भी इस काम को करना है, ठीक है?